गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय गौर निताय गौर रनिता जय गौ रनिता नितयो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 नितय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परमाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की नामाचार्य शिलादास ठाकुर की प्रेम से कहो सी कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि से वृंदावन धाम की जय श्री मथा धाम की जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री बद्रिका धाम की जय श्री द्वारकापुरी धाम की जय श्री रामेश्वर धाम की जय श्री अयोध्यापुरी धाम की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री मायापुर नवदीप धाम की जय श्री गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय युगधम हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय नितई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे ऑल ग्रोज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्रोज टू असेंबल डिवोट ऑल ग्रोज टू असेंबल डिवोट ऑल ग्रोज टू गुरु एंड गौरांग की जय बहुत सुंदर मृदंग सेवा के लिए आपकी जय ठीक है थोड़ा थोड़ा और थोड़ा समीप में आ जाइए आगे आ जाएं ताकि पीछे जो भक्त लोग अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं उसको स्थान प्राप्त हो जाए और यहाँ इतना स्थान है यहाँ आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा और बढ़ा सकते हो अपने है ना अच्छा है अच्छा है यहाँ का अलग ही अनुभव है ये भी बहुत सुंदर है भक्तों का इतना समीप से उनका संग और उनका दर्शन यहाँ बहुत पूरा संख्या भरा हुआ है एकदम हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल बहुत सुंदर है हाँ जनकपुर मिथिला से 115 लोग हरि वो जय हो जनकपुर वासियों की जय हो मिथिला नरेश की जय हो मिथिला नरेश नंदिनी की जय हो चलिए सभी हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण करते हैं ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम् वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाक्ष श्री रूपां सागर जातां सैगण रघुनाथवितम तम सजीवम सावदेतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्विताक्ष नमाओं विष्णु पादाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণী। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধ জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্সি রাধা কান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী শ্রী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরি প্রিয় বাঞ্ছা কল্পতরু ভিক্ষ কৃপা সিন্ধু ভেব চ পতিতানাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদ গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়া, ওম নমো ভগবতে বাসুদেব, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়া, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়া। নারায়ণম নমস্কৃত্য নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাস ততো জয় মুদীরে। নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবায়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নষ্ট। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দ গোপ কুমারা গোবিন্দায় নমো। মুকম করোতি বাচালম পঙ্গুম লঙ্ঘয়তে গিরিম ইয়ৎ কৃপা তদহম বন্দে পরমানন্দ মাধবম শ্রী গুরু দীন তারিণম। আরাধয় ভগবান ব্রজেস্তন্যস্তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্যা কাচিৎ উপাসনা ব্রজবধূবর্গিণ্যা কল্পিতা শ্রীমদ্ভাগবতম প্রমাণম লম প্রেমাপমর্দো মহান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম তত্রাদরো নাপরা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। तो शिल प्रभुपाद की कृपा से गागर में सागर भर गया है। तो गागर में सागर है ये, आप भक्तों का यहाँ देख करके उल्लास और भक्तों का संग, तो ये गागर में सागर बना रहे, आप हमारा सबका संग भक्तों का संग बना रहे। तो चलिए बहुत सुंदर। तो श्रीमद् भागवतम से आज का जो है प्रवचन पाठ होगा स्कंद 8 अध्याय संख्या 24 और अध्याय का नाम है श्री भगवान का मत्स्य अवतार। और आज का जो श्लोक संख्या है वो है श्लोक संख्या 49, ठीक है ना, है ना। चलिए पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। न नहीं यत प्रसाद श्री भगवान की कृपा अयुत भाग लेशम मात्र 10,000वां भाग अन्य च भी देवः देवता तक गुरुवः तथा कथित गुरु जनाः सारे लोग स्वयं कर्तुम संपन्न करने के लिए समेतः कुल मिलाकर प्रभवंती समान रूप से समर्थ बन सकते हैं पुंसः भगवान द्वारा तम उनको ईश्वरम ईश्वर को त्वाम आपकी शरणम शरण प्रपद्ये ग्रहण करने दें। न यत् प्रसादात् अयुत् भागलेशम् न यत् प्रसादात् अयुत् भागलेशम् अन्ये च देवा गुरवो जनः स्वयम् कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसास् तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये न यत् प्रसादात् अयुत् भागलेशाम् अन्ये च देवा गुरवो जनः स्वयम् कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसास् तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये न यत् प्रसादात् अयुत् भागलेशाम् अन्ये च देवा गुरवो जनः स्वयम् कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसास् तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये बोलिए वैष्णवीज माताएं चलिए तो शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की तो अनुवाद पढ़ते हैं। न तो सारे देवता न तथा कथित गुरु न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान नहीं कर सकते। यहाँ कुछ गलती है हमारे इस ग्रंथ में, कर सकते हैं लिखा है लेकिन होना क्या चाहिए, नहीं कर सकते है ना, गलती है इसमें। तो अतएव मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूँ। एक दफा मेरे पीछे बोलिए, न तो सारे देवता न तथा कथित गुरु न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से
या साथ मिलकर
आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान नहीं कर सकते। अतएव मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूं। तो मत्स्य अवतार में जो हम इसके स्कंद के 8वें स्कंद के भी अंतिम चरण में हैं और अंतिम अध्याय के भी अंतिम चरण में हैं। ये अंतिम अध्याय है 24वां, इसके बाद अंतिम चरण में है श्लोक, और पूरा स्कंद का भी 8वें स्कंद का भी अंतिम चरण है। तो इसके अनुवाद और तात्पर्य को समझने से पहले हम इस भागवतम का जो 8वां स्कंद है इसका थोड़ा सा इसको समझेंगे कि कैसे कैसे ये भागवतम का 8 स्कंद 61 श्लोकों में विभाजित किया गया है। किसी भी हम जब अध्याय को पढ़ते हैं या स्कंद को नहीं अध्याय को जब पढ़ते हैं तो उसका जो है थोड़ा सा हमारे को समझ लेना चाहिए कि कितने उसके अंदर श्लोक हैं और किस तरीके से उसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे आसानी हो जाती है समझने में। तो इसमें कुल मिलाकर के अंतिम जो श्लोक अंतिम जो अध्याय है 24वां, इसमें इसका नाम है मत्स्य अवतार और इसमें कुल मिलाकर के 61 श्लोक है। तो इसमें पहले से एक से लेके 3 जो श्लोक है उसमें परीक्षित महाराज जो है वो जिज्ञासा करते हैं कि ये मत्स्य अवतार का जो है भगवान ने क्यों अवतार लिया। मत्स्य मतलब मछली, जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक निम्न जाति का जीव है, ऐसे जीव के रूप में भगवान ने क्यों अवतार लिया। पहले से 3 श्लोक तक ये बताया गया और फिर 4 से 6 तक बताया गया कि भगवान का अवतार लेने का उद्देश्य क्या है। 4 से 6 तक ये बताया गया, फिर 7 से 9 तक बताया गया कि भगवान जो मत्स्य हैं वो पहले अवतरित हुए हैं स्वयंभू मनु के काल में, और किस लिए अवतरित हुए, वेदों को मुक्त कराने के लिए, जो असुर हैवग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था उससे मुक्त कराने के लिए भगवान ने जो है मत्स्य अवतार ग्रहण किया। उसके बाद में 10 से 26 तक जो है सत्यव्रत जो है किस तरीके से उन्होंने इस जो मत्स्य है इसको पाया, किस प्रकार से उसको प्राप्त पाया। आपने कथा सुनी है कई दिनों से, कैसे उनकी अंजलि में आ गई, फिर अंजलि से कैसे उनके कमंडल में आ गई, कमंडल से कैसे फिर घर ले आए, फिर सरोवर में ले आए, फिर नदी में, फिर सागर में, लेकिन वो उनका विस्तार होता जा रहा था उसका मत्स्य का। फिर वो समझ गए कि ये वास्तव में ये साधारण जीव नहीं है, ये परम भगवान है। तो इस प्रकार से 10 से 26 27 से 30 तक जो है सत्यव्रत प्रार्थना करते हैं भगवान से, मत्स्य के रूप में प्रार्थना करते हैं कि, और 31 से 38 तक भाई आप 31 से 38 तक मत्स्य जो है भगवान बात करते हैं, सत्यव्रत राजा से बात करते हैं कि किस प्रकार से कुछ ही समय में कुछ दिनों में ये पूरा जो है 3 लोग जो है पानी से डूब जाएंगे, प्रलय आ जाएगी। और 39 से 45 तक मत्स्य ने सत्यव्रत को कैसे बचाया उसके बारे में बताया गया है, और 46 से 53 तक ये बताया गया है कि सत्यव्रत जो है अब स्तुति कर रहे हैं भगवान की, जब प्रलय आ गई अब स्तुति कर रहे हैं मत्स्य की जो के सुप्रीम गुरु हैं। और 54 से 58 तक मत्स्य की जो है शिक्षाएं प्रदान की जाएंगी, और 59 से लेकर 61 तक इस अध्याय को पढ़ने का फल स्तुति क्या है, कि फल स्तुति में सबकी बहुत रुचि रहती है कि भाई हम आए हैं बैठे हैं लेकिन इसका फल क्या मिलेगा। तो सबसे पहले फल स्तुति देख लेते हैं, उसके बाद में आज के श्लोक में जाएंगे। ठीक है, तो फल स्तुति क्या कहती है,
क्या होगा इस अध्याय को पढ़ने से? तो यहां कह रहे हैं फल स्तुति में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, महान राजा सत्यव्रत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित यह कथा एक महान दिव्य आख्यान है। जो भी इसे सुनता है वह पाप में जीवन के फलों से छूट जाता है। श्लोक संख्या 59। अब 60वें में क्या कह रहे हैं, अवतारम हरेर्योयम कीर्तयेद अनुभवम नरा संकल्पास्तस्य सिद्धन्त्यन्ति स याति परमां गतिम। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनाता है, पहले तो आपने सुना, सुनने से क्या हुआ, सारे पापों से मुक्ति हो गई, लेकिन सुनने के बाद फिर क्या करना है, किसी को सुनाना है, और फिर क्या होगा, जो कोई मत्स्य अवतार तथा राजा सत्यव्रत के इस वर्णन को सुनाता है उसकी सारी आकांक्षाएं उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा, निश्चित रूप से भगवत धाम चला जाएगा। केवल क्या करने से, ये 24वां जो अध्याय है इसको सुनने से और सुनाने से, ये इसकी फलस्थिति है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं श्लोक में, तो जरा हमारा भी रुचि बनी रहेगी। चलिए तो आज के श्लोक को पुनः हम देखते हैं। तो ये श्लोक कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत जो है इस श्लोक को बोल रहे हैं, ये स्तुति कर रहे हैं, स्तुति। भागवतम जो है स्तुतियों से भरा हुआ है, पूरे भागवतम में हर स्कंद में स्तुतियां हैं, हर स्कंद में स्तुतियां हैं, ठीक है, पहले स्कंद में, दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में, सारे सारे स्कंदों में स्तुतियां हैं, स्तुतियों की कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं है। तो यहां पर स्तुति कर रहे हैं सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत, वो कह रहे हैं कि न तो सारे देवता, न तथाकथित गुरु, न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या एक साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान नहीं कर सकते, कोई भी कृपा प्रदान नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है चाहे मिलकर के चाहे स्वतंत्र होकर के 10,000वें भाग तक भी कोई जो है वो नहीं कर सकता, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूं। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, कहा गया है कि कामस तैस तैर हृद ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर शीघ्र ही फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। सामान्यतः लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते क्योंकि भगवान श्री विष्णु उनके भक्तों के आदेश पूरक कभी नहीं बनते। यहां प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर शीघ्र ही फल प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। और श्लोक संख्या बता रहे हैं 7वें अध्याय का, मेरे ख्याल से 20वां श्लोक है, कामस्तस्तृत्याना प्रबदन्ते अन्य देवता, कि जिनकी मति मारी गई है, भौतिक इच्छाओं से जिनकी मति मारी गई है, वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और सामान्यतः लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते क्योंकि भगवान श्री विष्णु उनके भक्तों के आदेश पूर्वक कभी नहीं बनते। मतलब क्या हुआ कि भगवान वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, भगवान क्या देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है, और लोग क्या चाहते हैं, उनको वो चाहिए जो उनको अच्छा लगता। ये अंतर है देवी देवताओं की आराधना में और भगवान की आराधना में, ये सबसे बड़ा अंतर है कि भगवान हमको वो कभी प्रदान नहीं करेंगे जो हमको अच्छा लगता, बल्कि वो देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। अभी रविवार को हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ मदन मोहन जी के दर्शन करने का, करौली जाने का। तो करौली जब हम जा रहे थे तो करौली के मार्ग में, यानी आप समझ लीजिए कि हिंडौन सिटी से लेके करौली और आगे तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग जा रहे थे कैला देवी के मंदिर में। वहां मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, और उनको पहले से बता दिया था कि आपको समय ज्यादा लगेगा, पूरा जो है रास्ते भरे रहेंगे, और बिल्कुल भरे हुए थे रास्ते। सब लोग कहां जा रहे थे? कैला देवी। कैला देवी जो है मदन मोहन जी के मंदिर से 25 किलोमीटर और आगे है। तो वो लोग कैला देवी को ही अपना, क्योंकि आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, आज से नवरात्रे प्रारंभ है तो ये मेला प्रारंभ हो जाता है। तो आप देखेंगे कि कहीं पे नवरात्रों में जगह जगह माता के मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है। कभी सावन के महीने में कांवरियों की भीड़ हो जाती है, कांवर लेकर के लोग चलते हैं, शिवजी की उपासना करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, कहीं माता की उपासना होती है। तो यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्यतः लोग भगवान श्री विष्णु के भक्त नहीं बनते, क्योंकि भगवान श्री विष्णु उनके भक्तों के आदेश पूर्वक नहीं बनते कि जो आपको, तो इसीलिए सामान्य लोग जो है भक्तों, सामान्य लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। वे भक्त को कभी ऐसे वर नहीं देते जिससे भक्त के मन में और वरों की इच्छा उत्पन्न हो। ये भी बहुत सुंदर बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवी देवताओं की जब हम उपासना करते हैं तो वो हमारी काम इच्छाओं को बढ़ाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे वर नहीं देते जिससे हमें लोभ उत्पन्न हो और लोभ और चाहिए और चाहिए, भगवान ऐसा नहीं करते। देवताओं की पूजा करने से फल प्राप्त हो सकते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन हुआ है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम। देवताओं से जो भी वर लिए जा सकते हैं वे क्षणिक होते हैं, क्योंकि देवता स्वयं भी क्षणिक होते हैं, स्वयं भी नश्वर हैं, अतः उनके वर भी नश्वर होते हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। जो लोग ऐसे वरों की आकांक्षा करते हैं वे अल्पज्ञ हैं, तद भवति अल्पमेधसाम। भगवान श्री विष्णु के वर भिन्न हैं। भगवान श्री विष्णु की कृपा होने पर मनुष्य भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त होकर भगवत धाम को वापस जा सकता है। इसीलिए देवताओं द्वारा दिए गए वर भगवान के द्वारा दिए जाने वाले वरों के 10,000वें भाग के भी बराबर नहीं होते। जो देवता वर देते हैं और जो भगवान वर देते हैं, तो यहां पर कह रहे हैं कि 10,000वां भाग भी नहीं होता जो भगवान वर देते हैं। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि वे देवताओं या झूठे गुरुओं से वर प्राप्त करने का प्रयास ना करें, उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से वर पाने की कामना करनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.66 में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से उबार लूंगा, तुम डरो मत, यही सबसे बड़ा वर है। यहां श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य जो है संपन्न पूरा होता है। तो न तो सारे देवता, न तथाकथित गुरु, न ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से या साथ मिलकर आपकी कृपा के 10,000वें भाग के बराबर भी कृपा प्रदान नहीं कर सकते, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूं। तो देवताओं में और भगवान में और देवताओं में कोई अंतर नहीं है, और विशेष रूप से ये देवताओं का जो हम लोग पूजा करते हैं ये भारतवर्ष में और ज्यादा प्रचलित है, भारतवर्ष में ज्यादा प्रचलित है। विदेशी लोग न भगवान के बारे में जानते हैं न देवताओं के बारे में जानते हैं। अब देवताओं के बारे में न जानने से उनकी प्रगति तेज हो जाती है, वो तेजी से आगे बढ़ जाते हैं जब वो किसी भक्त के संपर्क में आ जाते हैं। His Holiness राधानाथ स्वामी महाराज जब भारत आए थे और अनेक स्थानों में जा रहे थे तो वो देख रहे थे कि यहाँ के भगवान कोई सूंड वाला भगवान है, उसकी सूंड लगी हुई है, किसी की पूंछ लगी हुई है, कोई शेर पे बैठी है, कोई चूहे की सवारी कर रहा है, तो ये क्या अलग अलग कितने भगवान इनके हैं, कितने भगवान हैं। तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे प्रारंभ में। तो ये सारे जो देवी हैं देवता हैं जैसे ही हम इनका आश्रय ले लेते हैं तो फिर क्या होता है कि कामस्तस्तहित ज्ञाना प्रबदन्ते अन्य देवता। तो जो मति होती है हमारी बुद्धि होती है जब हम जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते, हम जीवन के परम लक्ष्य को नहीं जानते तो हमारे लिए एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी इंद्रियों की पूर्ति करना, अपने इंद्रियों की आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, अपने इंद्रियों की किस प्रकार से हम तुष्टि करें उसके लिए हम। और इसमें संसार के ज्यादातर लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं और इसमें हम भी रहे हैं क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म कोई वैष्णव परिवार में हुआ हो या हमको शुरू से ही कोई शिक्षा दी गई हो कि आपको भगवान की पूजा करनी है। नहीं, हम भी एक सामान्य परिवार में उत्पन्न हुए। और लेकिन श्रद्धा सब में होती है, श्रद्धा सब में होती है लेकिन अज्ञानता होती है साथ में। ये पता नहीं होता कि वास्तव में परम भगवान कौन है। इतना ही तो कमी है, कमी इतनी है कि हमें परम भगवान के बारे में अज्ञानता है, हमको मालूम नहीं, लेकिन श्रद्धा तो है, श्रद्धा होती है। लेकिन श्रद्धा होती है तो श्रद्धा इसलिए होती है कि हमें देवी देवता हमारी कामनाओं की पूर्ति करेंगे। चलो हमें प्रणाम तो करना ही है, प्रणाम अगर भगवान को नहीं करोगे तो भगवान की माया शक्ति को प्रणाम करो, प्रणाम तो करना ही है। बिना आश्रय लिए तो हम रह नहीं सकते, या तो भगवान की सेवा करेंगे या भगवान की माया की सेवा करेंगे। सेवा तो करना है, सेवा करना तो जीव का धर्म है, लेकिन कौन ये बताए कि सेवा करनी किसकी है, कौन ये बताए। आज हम सब यहां पहुंचे हैं वृंदावन में, क्या अपनी मति से अपनी बुद्धि से पहुंचे हैं, क्या हमने कोई होशियारी की और हमको पता लग गया और हम यहां आ गए। केवल अहेतु की कृपा, केवल भगवान की अहेतु की कृपा कि किस प्रकार से भगवान संजोग बना देते हैं। और कौन सा ऐसा हमने कार्य कभी किया होगा कि भगवान ने हम सबको चुन लिया, हमको चुन लिया। हमारी विचारधारा, हमारे मन से या हमारे प्रयास से कार्य संभव ही नहीं। कहीं पे यात्रा हमने बताया कि भाई करौली में ऐसे ही भक्तों की श्रद्धालुओं की यात्रा है, कहीं पे शिव कांवड़ की यात्रा है, और कहीं पे ऐसी यात्रा भी है जो निकलती है महाराष्ट्र में, जहां वर्करी जो है जाते हैं पंढरपुर धाम, अनेक स्थानों से मीलों मील की यात्रा करते हुए, सैकड़ों मीलों की यात्रा करते हुए वो जाते हैं पंढरपुर धाम, जाते हैं रुक्मणी विठ्ठल भगवान की जय जय श्री कृष्ण हरि, जय जय श्री कृष्ण हरि, जय जय श्री कृष्ण राम हरि करते हुए गाते हुए गाते हैं। तो जहां पर उन यात्राओं में कोई जुड़ जाता है, कोई माता की यात्राओं में जुड़ जाता है, लेकिन जो जुड़ जाता है चाहे देवी देवताओं की यात्रा में भी जुड़ता है, क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसकी सुकृति बन रही है, अज्ञात सुकृति बन रही है। ये अलग अलग लेवल है। जो भगवान की तरफ यात्राओं में जा रहा है वो ये पार करके आया है। देवी देवताओं का यदि आप अपमान नहीं कर रहे, अपराध नहीं कर रहे, और एक स्थान एक समय ऐसा आ जाता है आप देवी देवताओं की पूजा करते करते आप उनसे वर मांगना बंद कर देते हैं। एक समय ऐसा आ जाता है जब आपकी इच्छा समाप्त हो जाती है कि मैं कितना मांगूं और अब मेरे को केवल देवी की उपासना करनी है, अब मेरे को वर नहीं चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब वो देवी हमारी कृपा करती है हमारे ऊपर और हमारी प्रमोशन कर देती है। शिव जी हमारे ऊपर प्रमोशन कर देते हैं कि ये तो मेरे पास आ रहा है, मेरे से कुछ भौतिक कामना नहीं कर रहा, अब इसको श्री कृष्ण के पास भेजो, अब इसको प्रभुपाद के साथ जोड़ दो, अब इसको हरे कृष्ण महामंत्र के साथ जोड़ दो। ये सारी कार्य बड़े बड़े मतलब जिसे कहते हैं गोपनीय तरीके से चलता रहता है, गोपनीय तरीके से चलता रहता है, क्योंकि हमें क्या पता था, हम तो कुछ नहीं जानते थे भगवान के बारे में। नाम अपराध में दूसरा ही अपराध है, ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के भगवान के समान अथवा उनको उनसे स्वतंत्र समझना। तो वास्तव में हम सब भगवान से इनको स्वतंत्र समझते थे, और आज भी आप देख लो माता के मंदिर में, देवियों के मंदिर में सामान्य रूप से ज्यादा भीड़ रहती है। शहरों में, वृंदावन धाम में तो सब जगह से लोग आते हैं, लेकिन शहरों में ज्यादा भीड़ रहती है, कई कई घंटे लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। भगवान श्री राम से ज्यादा भारत में हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं। हनुमान जी की पूजा करना वो ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं स्वतंत्र रूप से। हनुमान जी की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको क्या से समझ के, स्वतंत्र समझ करके, कि जो हमारी इच्छा को हनुमान जी पूरा कर सकते हैं वो भगवान श्री राम पूरा नहीं कर सकते। तो ये दूसरा नाम अपराध है, इससे सभी पीड़ित हैं, संसार के सभी लोग इससे पीड़ित हैं, और ये हम अपने प्रयास से नहीं, ये केवल भगवत कृपा से, वैष्णो की कृपा से जो है ये हमको स्थान प्राप्त हो जाता है, कि जब हमको ये बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में भगवान कौन है। नेहा विक्रम नाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अर्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो व्या, कि जब हम थोड़ा भी भगवान के लिए कुछ करते हैं, चाहे अनजाने में करते हैं, हमें नहीं पता भगवान कब प्रसन्न हो गए। हम जैसे पर हम मैं जिस परिवार से था, जिससे मेरा संबंध था, हमारे माता पिता भी बड़े श्रद्धालु थे, लेकिन वो क्या क्या करते थे, नवरात्रों में जरूर 9 दिन का पाठ रखेंगे और वहां पर वो खेती भी जरूर करेंगे, उनका नियम था, साल में 2 बार ये करना ही करना है, चैत मास की चाहे नवरात्रे हो चाहे अश्विन मास के नवरात्रे हो, और पैदल यात्रा भी करनी है मंदिर तक। अब दिल्ली में वो मंदिर है बड़ा उसका कालका जी का, कालका जी के मंदिर भी जाते थे पैदल और छतरपुर के मंदिर भी जाते थे, तो हमने भी यही सब सीखा उनसे। लेकिन जब महीने में पूर्णिमा आती थी तो वो सत्यनारायण की कथा भी करते थे, माता की आराधना भी हो रही है और सत्यनारायण की कथा भी हो रही है, लेकिन दोनों में अंतर है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारती तीव्रे न भक्ति योगे ना ये तब पुरुषपुरम। तो भगवान के संबंध में जब हम जुड़ जाते हैं, फिर चाहे आपकी कामनाएं हो, चाहे कामनाएं ना हो, चाहे आपका मुक्ति की कामना हो, तो आप क्या करते हो, तीव्रता के साथ जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान आपको वो नहीं देंगे जो आपको चाहिए, बल्कि आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है। जब ये बात समझ में आ जाए किसी को, ये बात जब समझ में आ जाए, और भगवान की आराधना करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी पूजा जो है अपने आप हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जैसे जड़ की पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ जो है उसमें हरा भरा हो जाता है, पेट में भोजन डालने से शरीर के सब अंगों में भोजन पहुंच जाता है। तो अलग से फिर देवी देवताओं की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, जब भगवान की पूजा करने से सारे देवी देवताओं को है ना प्रसन्नता हो रही है। यज्ञार्थ कर्मोन्यंत लोकोयम कर्म बंधना, तो जब भगवान के लिए हम यज्ञ करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से छूटते हैं, कर्म बंधन जो है, नहीं तो ये सारा कर्म बंधन है, कितना जीव फंसता चला जाता है, बंधन ही बंधन फंसता चला जाता है। तो भागवतम में अनेक स्तुतियां हैं जहां भगवान की स्तुतियां हो रही हैं और भगवान के भक्तों की भी स्तुतियां हो रही हैं। तो यहां पर छठे स्कंद में नौवें अध्याय में जहां वृत्तासुर के द्वारा देवताओं की हार हो जाती है, वृत्तासुर देवताओं को पराजित कर देता है और भगवान की प्रेरणा से वे देवताओं वे जो हैं ददीची ऋषि के पास वो जाते हैं। ये प्रसंग आता है वृत्तासुर को जब वध करना है तो वो भगवान की जो है वो शरण लेते हैं और भगवान बताते हैं कि आपको जाना है कहाँ, ददीची ऋषि के पास जाना है। तो वहां पर भी स्तुति करते हुए भगवान की देवता कहते हैं, क्या कहते हैं, अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वनेव लाभेन समम प्रशांतम विनोपसर्पत्य परम ही बालिश स्वलांगुले नातिर अतिर सिंधुम। भगवान समस्त संसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन है, वे सदैव प्रसन्नचित एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं, उनकी कोई संसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं। अतः जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है, भगवान को छोड़ करके वो चाहता है किसी अन्य से मेरी रक्षा हो जाए, तो वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। तो कुत्ता जो है वो पानी में तैर सकता है, अगर कुत्ते को आप पानी में डाल दो तो तैरेगा और खूब उसमें गोते भी लगाएगा, लेकिन यदि कोई ये समझ ले कि कुत्ता जो है ये पानी में अपना डुबकियां लगा रहा है, इसको तो बहुत अच्छी तैराकी आती है, चलो मैं भी इसकी पूंछ पकड़ लेता हूं और इस सागर से पार हो जाऊंगा, इस समुद्र से पार हो जाऊंगा, तो कह रहे हैं कि ये यदि कोई कुत्ता समुद्र में गोता लगाए और कोई कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाहे तो मैं निश्चित रूप से एक नंबर का मूर्ख है, ना तो कुत्ता समुद्र पार कर सकता है और ना ही कुत्ते की पूंछ पकड़ करके कोई व्यक्ति समुद्र को पार कर सकता। इसी प्रकार जो अज्ञान के सागर को पार करना चाहता है, जो इस जन्म मृत्यु के सागर को पार करना चाहता है, उसे किसी देवता या किसी अन्य की शरण नहीं लेनी चाहिए। जिसको जीवन में अपना लक्ष्य समझ में आ गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रारंभ में तो समझ में नहीं आता, जब प्रारंभ में हम इस्कॉन के साथ जुड़े थे तो हमको सातवां अध्याय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, सही बता रहे हैं, हम कहते थे ये क्या भगवान मैं लगा के बैठे हैं, मैं ऐसे में देवताओं के पास मत जाओ, ये बुद्धि मारी गई है तुम्हारी, हमको लगता था क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान, हम सातवें अध्याय को अच्छा नहीं लगता था हमको पढ़ना, हमारी खुद की स्थिति हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि जीवन भर हमने देवताओं की पूजा उपासना की, अब हमको जब इस्कॉन से हम जुड़े तो भक्तों ने जब हम जिनके संपर्क में आए तो उन्होंने जब हमारे घर पे आके देखा के देखते हैरान रह गए, चक्कर आने लगे, उनको चक्कर आ रहे थे कि तुमने किसी देवता को छोड़ा ही नहीं। हमारा ऑफिस था खारीवावली में, वहां भी हमने सारे देवताओं को बिठा रखा था, सारे देवताओं को, तो उन्होंने कहा कि इनको हटाओ, हमने हम नहीं हटाएंगे भैया, हमको कोई दुकान बंद करनी है अपनी, बोले नहीं इनको हटाओ, तो हम बहुत मना किए, बोले नहीं हटा दो तुम, मैं कहा नहीं, हमारा चला चला है, काम बंद हो जाएगा। और वास्तव में वही हुआ भी, वास्तव में वो हुआ भी, लेकिन हम उस वक्त समझ नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। हमने भक्तों के कहने अनुसार वो देवताओं के सारे तस्वीरें हटा दी, नवरात्रों के हम वहां पाठ करते थे वो हमने बंद कर दिए, और प्रभुपाद की किताबें हमने रख दी सजा करके, और प्रभुपाद का मंत्र गंगा चला दिया। हमने कहा चलो कुछ नया करते हैं, अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, अब हमारा जितना काम है वो दुगना और चौगना होगा। लेकिन वास्तव में धीरे धीरे देखा, जैसे जैसे प्रभुपाद का मंत्र चल रहा है हमारा धंधा कम होता जा रहा है। ये क्या हो गया भाई बिजनेस को, ये हुआ क्या? मैंने कहा पूरे मार्केट में, पूरे खारी बावली में एक मेरी दुकान है जहां मंत्र गंगा चलती है और प्रभुपाद की वाणी चलती है, और सब लोग इतना धंधा मजे से कर रहे हैं, मेरा धंधा जो है नुकसान में क्यों बदलता जा रहा है? प्रश्न हो गया, प्रश्न मन में आ गया कि क्या हो रहा है। अब इधर के न उधर के, न इधर जा सकते न उधर जा सकते, बार बार भक्तों के पास जाए क्या हो रहा है ये? बोले चिंता मत करो, पर डटे रहो, डटे रहो। तो ऐसे करते करते मतलब वो सारी यात्रा हम पार किए हैं, और एक दिन ऐसा आ गया जीवन में कि ये निर्णय करना पड़ा कि अब इस काम को बंद कर देना ही अच्छा है, बिजनेस को बंद कर देना अच्छा है, लेकिन करें क्या? तो मन में बड़ी ग्लानि थी, मन में बड़ी ग्लानि थी, और लोग भी हमको बड़ा हीन दृष्टि से देखते थे। देखो पिता का बना बनाया कारोबार सब बिगाड़ दिया, क्या बेटा है इनका, सारा कारोबार खराब कर दिया। भाई भी हमको, हमारे को हीन दृष्टि से देखते थे कि बड़ा आया हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने वाला है, देखो मैं कितनी बिल्डिंग्स बना रहा हूं, मेरे कितने बड़े बड़े काम है। और हम भी सोचते थे भाई वाकई सही बात है, लेकिन हम उस बात को समय समझ नहीं पाए कि वो भगवान की कृपा थी, वो भगवान की कृपा हो रही थी, भगवान हमारे सारे बंधन काट रहे थे। हमको लगता था कि ये धंधा बंद हो जाएगा तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है। जब हमारा संबंध जुड़ जाता है भगवान के साथ, जब संबंध ज्ञान हो जाता है हमको, जब पता लग जाता है कि मेरा परम पिता जो है षट ऐश्वर्य पूर्ण है, और जब मैं उसकी सेवा करता हूं, तो एक संसारिक व्यक्ति जब किसी नौकर को रखता है वो उसकी पूरी इच्छाओं का ध्यान रखता है, उसको देता है, तो क्या भगवान की हम सेवा करेंगे, भगवान हमारी इच्छाओं का, हमारी हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा नहीं करेंगे? तो ये अज्ञानता से बाहर निकलना, इसमें समय लगता है, बड़ा द्वंद चलता है, ऐसा नहीं, और ये सबके कईयों के सबके जीवन में होता है, द्वंद आता। भगवान डुबकी लगवा देते हैं पूरे पानी में, पूरा ऐसे आसानी से नहीं होता कि किसी ने कहा और हमारा भक्ति जो है चलता गया। परीक्षाएं तो आती हैं, भगवान भी ठोक बजा करके धीरे धीरे उसको जो है मजबूत करते जाते हैं, लेकिन भगवान की ये कृपा है कि भगवान गिरने नहीं देते, गिरने नहीं देते। एक दफा भगवान की तरफ आगे बढ़ जाओ तो भगवान धीरे धीरे करके संभाल लेते हैं, संभाल लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बात ये समझते समझते समझ में आती है। कई दफा लगता है कि भाई शायद हमने जीवन में गलत स्टेप उठा लिया, गलत उठा लिया, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया कितना तेजी से आगे बढ़ रही है, कितनी प्रगति कर रही है, लेकिन वास्तव में देखो तो जो प्रगति कर रहे हैं वो अंदर से बहुत दुखी हैं। उनके पास सोने का पलंग हो सकता है लेकिन नींद नहीं आती, व्यंजन तो बहुत हैं आगे लेकिन भूख नहीं लगती, क्या करूं, घर में अशांति है, बनती नहीं है, परिवार में बनती नहीं, अनेक प्रकार से रात दिन चिंताओं से, तो ये इन सब बंधनों से भगवान निकाल देते हैं जब हम भगवान की शरण लेने का प्रयास करते हैं और सह लेते हैं, सहते हैं। जो भी जीवन में सुख दुख आता है, सुख दुख भक्तों के जीवन में भी आता है और सुख दुख जो भगवान की शरण नहीं लेते उनके जीवन में भी आता है। और सामान्य व्यक्ति तो कहता है भाई देखो ये भक्त हैं, इनके जीवन में भी तो कष्ट आ रहा है, हम भक्ति क्यों करें। तो भगवान उनके उनकी दृष्टि को ढक देते हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है वो कष्ट भी निराला होता है, वो कष्ट भी निराला होता है, वो कष्ट भी निराला होता है। आज हमारे संस्था में आप देख लीजिए, हमारे महाराज वो दिव्य स्थिति में है, हिज होलीनेस जयपता का स्वामी महाराज कितनी बार हॉस्पिटल गए, कितनी बार उनका ट्रांसप्लांट प्लांटेशन हुआ, कितनी बार किडनी बदली, कितनी बार उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन उनको कोई हिला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। ऐसे हमारे और भी महाराज, तो ये जो दिव्य स्थिति है सामान्य आदमी नहीं समझ पाएगा इसको। सामान्य व्यक्ति कहेगा देखो जा रहा है हॉस्पिटल में जा रहा है, ये भी बीमार है, राधा गोविंद महाराज जी देखो कितने सालों से जो है, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं समझेगा इस बात को। सामान्य व्यक्ति के जीवन में ऐसे दुख आ जाएं तो वो आत्महत्या कर ले, लेकिन भक्तों के जीवन में जो ये कष्ट होते हैं ये वास्तव में कष्ट हमको दिखते हैं, वो उस स्थिति से बहुत ऊपर हो जाते हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता शरीर की स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से आज का जो ये श्लोक है इसमें यही कहते हैं कि भागवतम में ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हुए कहते हैं समाशिता ये पद पल्लवा प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम भुधेर वत्स परम पदम पदम परम पदम 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 यत विपदा न तेषाम। तो भगवान के चरण कमल एक अविनाशी नाव है, जो उस नाव का आश्रय ले लेता है तो ये जो जगत है, जो जगत में जगह इस पदम पदम विपदाम न तेषाम, तो ऐसे इस संसार में रहते हुए भी वो विपत्तियों से मुक्त रहता है, विपत्तियों से मुक्त रहता है, विपत्तियां उसके ऊपर नहीं आती, जो क्या करता है भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है। भगवान के चरणों का जो आश्रय ले लेता है उसके लिए ये जगत कैसा हो जाता है, जैसे गो खुर होता है गाय का, गाय के जो बछड़े का जो खुर होता है, पांव होता है, वो जो खड्डा होता है उसमें अगर पानी भर दो तो भाव सागर को पार करना, इस संसार को लांघना, इस जन्म मृत्यु के सागर को लांघना उतना ही है जितना कोई बच्चा खेल खेल में एक जो गौ खुर से बना हुआ गड्ढा है उसको बच्चा कैसे पार कर जाता है, ऐसे पार हो जाता है। और ये और कोई नहीं समझ पाएगा, और कोई नहीं समझ पाएगा जब तक हम उस स्थिति को करते करते ही, अभ्यास करते करते ही हमको धीरे धीरे करके ये बातें समझ में आती हैं। आज जो हमारी स्थिति है वो स्थिति अभी और आगे हमको चलना है और मजबूत हमको आगे बढ़ना है, लेकिन किसी ने हमको मार्ग दे दिया, किसी ने हमको बता दिया, ये जो 9 सोपान है आदो श्रद्धा, श्रद्धा तो होती है लेकिन श्रद्धा हमारी कोई पकड़ करके ये कह दे कि अब तू ठाकुर जी की आराधना कर, तेरे को परिक्रमा करनी है तो गोवर्धन की परिक्रमा कर, वृंदावन की परिक्रमा कर तो वृंदावन जाया कर, तो गोवर्धन जाया कर, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया कर, कोई हमको वहां से निकाल कर इधर प्लेस कर दे, कोई हमको इधर प्लेस कर दे। तो जीव की जो यात्रा है वो चली आ रही है, तो जैसे हम पिछले जन्मों में जहां हमने कुछ भक्ति की होगी तो उस जीव को फिर यहां पर इस जन्म में कहीं ना कहीं वो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वो सौभाग्य प्राप्त हो जाता है कि किस प्रकार से हमको फिर भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है और हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये किसी के साथ, किसी को बात समझ में आ जाती है एक मिनट में समझ में आ जाती है, और किसी को समझ में नहीं आती उसके साथ जीवन भर सर पटकते रहो, ठोकरे मारते रहो, वो अपनी टस से मस नहीं होके देगा, वो कहेगा नहीं, वो कहेगा यही यहीं पे मैं तो टिका हुआ हूं, मैं तो यही करना है मेरे को। तो इस प्रकार से जब हमारी सुकृति, अज्ञात सुकृति हमारी बनती है, प्रभुपाद ने कहा कि विदेशी जितने भी ये प्रभुपाद के संपर्क में आए, बोले तुम्हारी कोई अज्ञात सुकृति नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने प्रभुपाद के दर्शन किए उनकी सुकृति बन गई, उनकी सुकृति बन गई। जो भक्तों का जब हम दर्शन करते हैं, भक्तों का जब हम संग करते हैं, तो हमारी सुकृति बनती चली जाती है। तो श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद फिर साधु संघ जब मिलता है, साधु संघ के बाद जब हम कोई बता देता है, भजन क्रिया के साथ जुड़ जाओ, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छा लगे बुरा लगे, मीठा लगे कड़वा लगे, मन लगे ना लगे, दवा समझ के खाना ही खाना, खाना ही खाना, ये दवा है, ये औषधि है, चाहे नहा के खाओ चाहे बिना नहाए खाओ, दवा अपना असर करेगी, चाहे नहा के खाओ चाहे बिना नहाए खाओ, खाने से पहले खाओ खाने के बाद खाओ, कैसे भी खाओ, लेकिन ये जो दवा जो खाता रहेगा जो हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जब रटता रहेगा, पहाड़ जैसे उसके जीवन के पाप भी होंगे जिसको वो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता, भगवान कहते हैं ऐसे वो भस्म हो जाएंगे जैसे प्रज्वलित अग्नि में जब हम कोई ईंधन डालते हैं तो अग्नि समस्त उसको ईंधन को भस्म कर देती है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हमारे जीवन के सारे पाप नाश हो जाते हैं, कुछ बच नहीं सकता, कुछ नहीं भग सकता, है ना। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मापेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापे भे मोक्षयिष्यामि मास्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप अपनाशनम प्रणामो दुःखसमस्तम नमामि परमहरम। तो इस प्रकार से जितना हम अटूट श्रद्धा के साथ और अटूट विश्वास के साथ और गुरु चरणों का आश्रय लेकर के, ये मुख्य बात है, नाम जप करना है, और नाम जब तभी असल में फलीभूत होता है जब गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। जिस जीवन में गुरु और कृष्ण दोनों प्राप्त हो जाते हैं वो जीवन, बस वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा से हमको गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान के साथ हमारा संबंध बनता है, संबंध जुड़ता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो रेलगाड़ी है वो दो पटरियों पे चलती है, जैसे रेलगाड़ी दो पटरी पे चलती है, एक गुरु और एक भगवान श्री कृष्ण। और जिसके जीवन में गुरु और कृष्ण आ जाते हैं, और गुरु कैसे होने चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। संसार में लोग धोखा खा रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, लेकिन कौन से गुरु हैं वो भी ज्ञान नहीं। तो कितनी लंबी यात्रा है, ये तो हम बहुत भाग्यवान हैं आप और हम कि सही स्थान पे और परंपरा के साथ जुड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग समझते हैं कि जी इस कौन में तो कुछ ज्यादा है नहीं, अब चलो कहीं और चलते हैं, कहीं और चलते हैं। प्रभुपाद कहते नहीं, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, क्योंकि आप जहां आ गए हो, आप जिस स्थान पे हो, आप जिस संस्था के साथ जुड़े हो, आप प्रभुपाद के साथ जुड़े हो, प्रभुपाद जगत गुरु हैं, प्रभुपाद हमारे पूरे विश्व में जिन्होंने ऐसे जो है वासना में लिप्त लोगों को भक्त बना दिया, ये कोई कहने की बात नहीं, इस सबके सामने ये ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे प्रभुपाद ने विदेशियों को तिलक गले में, कंठी माला, धोती कुर्ता, सर मुंडवा करके उनको भक्त बनाया। किसी ने किया आज तक ऐसा? किसी ने नहीं किया, ऐसा कोई नहीं कर पाया। तो ये प्रभुपाद की शक्ति है। आज भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभुपाद के ग्रंथों के साथ, प्रभुपाद की वाणी के साथ, चाहे कितने भी आपको YouTube पे लेक्चर्स मिल जाएं, कितने भी मिल जाएं, लेकिन एक कार्य हमको करना चाहिए, प्रभुपाद की जो वाणी हमको सुनने को मिलती है, प्रभुपाद के जो हमारे को प्रतिदिन दर्शन करने को मिलते हैं, जो हम गुरु पूजा करते हैं, ये हमारे समस्त पापों को जला रहा है, समस्त पापों को जला रहा है। आपको प्राप्त जो चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है, हम उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्कुल मत ऐसा कार्य करना कि इसकी कदर ना करें। मिल गया है, ये हमारा सौभाग्य है, हमको प्राप्त हो गया है, तो उसकी कीमत को भी हमें समझना है कि हमको क्या प्राप्त है, और करना भी है, फिर औरों को भी जोड़ना है। ये सबसे बड़ी बात है, जोड़ना भी है ना, जिसको भी मिलो। बेचारे बहुत से लोग, हम जा रहे थे तो हम देख रहे थे, मैं कितनी लोग परेशान है, तपस्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कोई इनको बताए कि भैया कहाँ जा रहे हो, और 25 किलोमीटर जाओगे, या मदन मोहन जी बैठे हैं यहाँ, करौली मदन मोहन जी बैठे हैं, क्यों नहीं यहाँ पर प्रणाम करने आ रहे हो, क्यों आगे जा रहे हो। तो ये कार्य हमको मिलकर के करना है, और सबको भक्त बनाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद आप सभी का। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद।